मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। AFAIS के आज 25 जून 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे सहकारी बैंक यानी कि कोऑपरेटिव बैंक के बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए इससे पहले कुछ दूसरी खबरों को जान लेते हैं। फ्रेंड्स, कल कैबिनेट की बैठक थी। अब जानते हैं कि हर वेडनेसडे को ऑलमोस्ट कैबिनेट की बैठक होती है, कैबिनेट यानी कि सरकार, और उस दिन सरकार कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और इसके बाद न्यूज में आप उन महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में सुनते हैं। तो पहली बात तो आप ये मानकर चलिए, याद रखिए कि बुधवार की न्यूज आपको सुननी ही सुननी है, हालांकि दो रोज की सुननी है लेकिन उस दिन जरूर सुनना है और ध्यान से सुनना है। बेहतर होगा कि उस दिन दूरदर्शन की भी न्यूज आप सुने, क्योंकि उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज होती है उसके ऊपर फिर वो डिस्कशन कराते हैं, तो उससे थोड़ी सी आपकी तैयारी बेहतर हो जाती है। अब यहां एक समस्या आती है कि कैबिनेट बहुत सारे निर्णय लेती है ना, देश के जितने भी विषय हैं वो उन पर निर्णय लेती है। प्रश्न उठता है कि उनमें से कौन से निर्णय आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर सारा निर्णय आप अपने झोली में लेकर के चलेंगे सारे निर्णय तो मुश्किल हो जाएगी, है ना। दिमाग में आखिर आफ्टरऑल आप कितनी चीजों को रख सकते हैं और हर बुधवार को ये होना है, तो अब आप इसका निर्धारण कैसे करेंगे कि कौन से निर्णय आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सीधी सी बात है मित्रों, उसके लिए होता है आपका अपना सिलेबस। जब तक आपको अपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के सिलेबस का पूरा ज्ञान नहीं होगा, अच्छी तरह ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप कभी भी, चाहे वो रेडियो न्यूज हो, चाहे वो दूरदर्शन न्यूज हो, चाहे वो अखबार के न्यूज हो, चाहे मैगजीन्स के आर्टिकल हो, आप पूरी तरह न्याय नहीं कर सकते। इसे आप गांठ बांध लें तो आपकी जो सबसे पहली जरूरत होती है और जो अनिवार्य होती है वो ये कि आपको अपने सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर कल कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कि पशुपालन ढांचा विकास कोष तैयार किया जाएगा, जिसमें 15,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, और इसके बाद कुछ उसमें डेटा भी आए हैं कि इसमें 35 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा। साथ ही साथ इसमें डेयरी, पोल्ट्री यूनिट और जो मीट से संबंधित जो उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा, मीट प्रोसेसिंग यूनिट, इससे हमारा निर्यात बढ़ेगा, दूध का उत्पादन बढ़ेगा और 35 लाख नौकरियां भी पैदा होंगी। देखिए, ये छोटी सी खबर है। अब सवाल ये है कि आपके लिए ये महत्वपूर्ण है कि नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि ये महत्वपूर्ण है कि नहीं है। तो अगर सिलेबस आपके दिमाग में है तो देखिए, कृषि पर बहुत बड़ा सिलेबस आपका दिया हुआ है कृषि के बारे में, और जब हम कृषि की बात करते हैं तो याद रखिए कि उसमें ये जो पशुपालन है, जो सब्सिडरी एक्टिविटीज होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, पशुपालन है, मछली पालन है और जो दूसरे इस तरह के काम होते हैं वो इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। और जब आप अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इस पर तो प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। अब इसका दूसरा पक्ष देखिए, दूसरा पक्ष यह है कि आपने किताबों के जरिए, लेक्चर्स के जरिए इस टॉपिक को तैयार कर लिया है, पशुपालन वाले टॉपिक को तैयार कर लिया है। अगर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पशुपालन के बारे में कुछ पूछा गया तो वो डेफिनेटली एग्जामिनर इस बात का ध्यान रखते हैं कि अभी अगर सरकार ने कोई बड़ा निर्णय लिया है तो वो चेक करना चाहते हैं कि स्टूडेंट को इस निर्णय के बारे में मालूम है या नहीं है। तो इसीलिए अपने उस प्रश्न में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ वो ऐसा डाल देंगे जिससे ये टेस्ट कर सके कि आपको मालूम है कि नहीं है। इसका मतलब है कि बहुत ही सामान्य सा ऊपर से दिखाई देने वाला यह न्यूज, जिसे दूसरे लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दोस्तों, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते समय आपको इस बात को तो ध्यान में रखना ही होगा। ठीक, जो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण खबर थी दोस्तों, वो अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र की भागीदारी, और सच पूछे तो ये सबसे बड़ी खबर थी। कल दूरदर्शन पर काफी इस पर डिस्कशन भी कराया गया है, और मित्रों इस पर मैं अभी आपसे विस्तार से बातें नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कदम है, निजीकरण की ओर या उदारीकरण की ओर आप कह लीजिए बढ़ाया हुआ बहुत बड़ा कदम है। आप देखिए कि सरकार ने धीरे धीरे 1990 के बाद आप यूं कह लीजिए कि ओपन अप करना शुरू किया है। तो पहले उद्योग के क्षेत्र खोले गए, इसके बाद हमने डिफेंस को खोला, जो बहुत बड़ी बात होती है डिफेंस को निजी क्षेत्र के लिए खोल देना, और अब अंतरिक्ष को भी ओपन अप कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा कदम भी है, खासकर आप कह सकते हैं कि जो अभी आत्मनिर्भर भारत की बात की जाती है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देख रहे हैं कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को बहुत अच्छी सफलता मिल रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सफलता मिल रही है, रिसर्च की दृष्टि से भी और विदेशी मुद्रा अर्जित करने की दृष्टि से भी, और इसका जो अपना मैनेजमेंट है, देखिए वो सरकारी तंत्र है, इसके बावजूद जो इसका प्रबंधन है वो बहुत बेहतर है। इसके बारे में हम लोग कई बार बातें कर चुके हैं, फिलहाल मैं विस्तार से इस पर बात नहीं कर रहा हूं। देखते हैं कुछ आर्टिकल्स और जब एडिटोरियल कमेंट्स आएंगे तो हमको एक दिशा मिलेगी कि किस एंगल से बात की जानी चाहिए, तब बात करना ज्यादा उपयुक्त होगा। दोस्तों एक अगली खबर, हालांकि वो छोटी सी खबर है और खासकर जो उत्तर प्रदेश और बिहार के स्टूडेंट हैं उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, स्पेशली उनके स्टेट सिविल सर्विस के लिए, कि कुशीनगर को बकायदे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा देने के लिए कैबिनेट ने फैसला किया है। और जब देखिए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का आप दर्जा दे देते हैं तो होता क्या है कि फॉरेन से फिर सीधे सीधे वहाँ आपकी जो फ्लाइट है वो लैंड करती है, थोड़ा सा वहाँ आपको अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है थोड़ी बहुत, कि जो आ रहे हैं उनका कस्टम क्लियरेंस वगैरह के लिए आपको उस एयरपोर्ट को थोड़ा सा स्तरीय बनाना होगा। और खासकर ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि जो बुद्धिस्ट सर्किट है, बुद्ध का पूरा, बुद्ध के जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वहाँ पर्यटन बढ़ सके। और आप देखते हैं कि जो बुद्ध के सबसे ज्यादा स्थल हैं जहां बुद्ध रहे उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं। तो कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना देने के बाद जो पर्यटन है और खासकर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन है डेफिनेटली उसको बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों यहां मैं एक बात अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा कि जब आप ब्रिटेन वगैरह में टूरिज्म के लिए जाएंगे तो वहां इस तरह के बहुत सर्किट बने हुए हैं। जैसे एक छोटा सा सर्किट है कि आप उसके तहत शेक्सपियर के जो जो स्थान रहे हैं आप उन्हें देख सकते हैं, साहित्यकारों के बने हुए जो बहुत ही प्रोमिनेंट साहित्यकार रहे हैं उस सर्किट में आप चाहें तो उनके स्थान देखने, उनके म्यूजियम देखने आप जा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत से सर्किट बने हुए हैं, तो हमारे यहाँ बुद्धिस्ट सर्किट डेफिनेटली इसमें काम करेगा। और श्रीलंका ने तो बकायदे रामायण के बारे में बना रखा है ना, रामायण का आप जानते हैं कि कथा श्रीलंका से भी जुड़ी हुई है, तो श्रीलंका ने बना रखा है कि रामायण से संबंधित जो स्थल हैं उनका पूरा का पूरा एक सर्किट है, आप कह लीजिए चक्र है। और भारत और दूसरे देशों के लोग जो रामायण से थोड़ी सी श्रद्धा रखते हैं वो जाते हैं, और मैं और प्रीति अग्रवाल तो बकायदे पूरे के पूरे सर्किट में हम लोग घूम कर भी आए हैं। तो उसी तरह का ये हमारे यहाँ का बुद्धिस्ट सर्किट है। और आप जानते हैं कि पर्यटन अभी खासकर एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का अंग बन गया है। फ्रेंड्स एक वीज़ा को आप लेकर के अखबारों में पढ़ रहे हैं कि जो अमेरिका है, अमेरिका ने जो H-1B वीज़ा है उस पर अभी रोक लगा दी है खासकर दिसंबर तक के लिए। और ये सीधे सीधे जो ट्रंप है उनका चुनावी आप यूं कह लीजिए कि उठ कदम है, क्योंकि अभी चुनाव होने हैं नवंबर में अमेरिका के, और इसमें उन्होंने नारा दिया है जो शुरू में भी वो दे चुके हैं कि अमेरिका जो है अमरीकी के लिए सबसे पहले है। उनको लग रहा है कि अमेरिका में जो नौकरियां हैं अमरीकी लोगों के लिए वो कम होती जा रही हैं, खासकर कोरोना संकट के कारण बेरोजगारी की दर और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो बाहर से आने वाले अगर हम टेक्नोक्रेट्स को रोक देते हैं, जो IT वगैरह के जो स्टूडेंट होते हैं, युवा होते हैं जो रोजगार की तलाश में वहां जाते हैं, तो स्थानीय लोगों को नौकरी मिल सकेगी। हालांकि उनके इस कदम का बहुत ज़्यादा विरोध वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर अमरीकियों को नौकरी में रखेंगे तो डेफिनेटली वो उनके लिए बहुत महंगा साबित होगा, भारतीय अपेक्षाकृत उन्हें सस्ते मिल जाते हैं। फिर एक बात और भी है, आप चलिए H-1B वीज़ा मत दीजिए, लेकिन अब जब वर्क फ्रॉम होम का समय आ रहा है और टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो रही है तो बकायदे वहाँ की कंपनियाँ फिर अपने काम को आउटसोर्स कर सकती हैं, वो दूसरे देशों में रहने वाले लोगों को अपना काम दे सकती हैं। खैर अब ये चूंकि पूरी तरह से चुनावी रणनीति है तो इसके बारे में स्थायी रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल लोग इसे एक प्रकार से भारत अमेरिकी संबंधों में थोड़ी सी खटास का कारण मान रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी इस तरह के कदम उठा चुके हैं ट्रंप महोदय, तो हो सकता है कि ये जो प्रॉब्लम है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वह है सहकारी बैंक। जो सबसे बड़ा एक और निर्णय कैबिनेट ने लिया है वो ये है कि हमारे यहाँ के जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो कोऑपरेटिव बैंक्स अब सीधे सीधे रिजर्व बैंक की देखरेख में आ जाएंगे, उसके नियंत्रण में आ जाएंगे। आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये हमारे यहाँ का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, और हमारे यहां जितने भी वाणिज्यिक बैंक है, कमर्शियल बैंक है, उन सभी का नियमन आप एक तरीके से कह लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कानून बनाता है और उन नियमों का पालन सभी कमर्शियल बैंक को करना पड़ता है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक अभी तक इस दायरे से मुक्त थे। इन्हें पंजीयन तो कराना होता था, लेकिन ये पंजीयन कराते थे जो राज्य सरकारों के रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज है उसके अधीन होते थे, रिजर्व बैंक के अधीन नहीं होते थे। ठीक है, देखिए पिछले कुछ समय से आप क्या देख रहे हैं, बहुत से जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो बुरी तरह से फेल हो रहे हैं। सोच करके देखिए कि कुछ समय पहले तक देश में हमारे लगभग 3,000 कोऑपरेटिव बैंक्स थे, 2900। न्यूज में आपने सुना होगा कि अब उनमें से सिर्फ 1540 ही बचे हुए हैं, यानी कि लगभग आधे बैंक या तो बंद हो गए, नुकसान के कारण बंद हो गए होंगे, या यूं कह लीजिए कि फेल हो गए या बंद कर दिए गए, जो भी कारण रहे हो। और अभी कुछ समय पहले ही जो महाराष्ट्र का पीएमसी बैंक घोटाला हुआ था, उसने तो पूरे देश को चकित कर दिया था। तो दोस्तों, ये माना जाता है कि जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, और उसका जो सबसे बड़ा रीजन माना जाता है वो ये है कि इनके पास व्यावसायिक दक्षता नहीं होती है। जो उस बैंक के शेयर होल्डर्स होते हैं वही मैनेजमेंट में होते हैं, वो अपने हित के लिए निर्णय लेते हैं, पब्लिक के लिए निर्णय नहीं लेते। और जो उसके व्यवस्थापक होते हैं, जो आप यूं कह लीजिए कि बोर्ड के लोग होते हैं, राजनेता होते हैं। ज्यादातर आपको कोऑपरेटिव बैंक्स में जो उसके चेयरमैन मिलेंगे और दूसरे, वो खासकर पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े हुए लोग मिलेंगे, जिनके पास सच पूछे तो इस तरह के बैंक संबंधी व्यवसाय का कोई अनुभव नहीं होता। तो सीधी सी बात है कि ऐसी स्थिति में उन कोऑपरेटिव बैंक्स को फेल होना ही होना है, जबकि जो कोऑपरेटिव सिस्टम है आजादी के बाद से ही भारत के आर्थिक विकास का एक बहुत बड़ा आधार रहा है। अगर ठीक तरीके से काम किया जाए तो ये एक प्रकार से गेम चेंजर बन सकता है। देखिए, जो अमूल है, अमूल दुग्ध उत्पादन केंद्र जो है, वो कोऑपरेटिव का सफल कोऑपरेटिव का आप कह सकते हैं कि बहुत ही जीता जागता उदाहरण है। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैं चाहूंगा कि इस पर आप अपनी तरफ से अच्छी तैयारी करें। दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: संजीता, प्रियंका रावत देहरादून उत्तराखंड से, नवदीप सिंह जगराओं पंजाब से, अलका कुमारी और मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।